ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போலியே சச்சிதானந்த பகவான் கி. சப்சே பஹலே கல் மே उपस्थित नहीं हो सके, उसके लिए जो आप लोगों को थोड़ी असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है. और साथ में महाराज श्री का आशीर्वाद आप सब लोगों को मिला, जो स्वाध्याय में आप सब लोगों को बड़े प्रेम से करा रहे हैं, उनका सत्संग प्रातःकाल के इस पावन बेला में उनका आशीर्वाद सत्संग प्राप्त हुआ आप सब लोगों को, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है. आइए, विचार कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद के 13वें मंत्र को लेकर के. अन्य देवाहु संभवात अन्याहुर संभवात इति सुश्रुणम धीराणाम ये नद द्विचक्षसे. कार्य ब्रह्म की उपासना से जो फल बताया गया है और अव्यक्तोपासना का और ही फल बताया गया है. कार्य ब्रह्म का फल अलग है और कारण ब्रह्म का फल अलग है, जिसे संभूति और असंभूति के द्वारा बताया जा रहा है. इन दोनों को समझने के लिए बुद्धिमानों से सुना है, उनकी जो व्याख्या की गई. अन्य देवारहु संभवात संभूति और असंभूति, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, अर्थात जिससे संभवन होता है, जो कार्य ब्रह्म, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्तंभ पर्यंत तक जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब का सब कार्य रूप है और इसको कार्य ब्रह्म कहा गया है. इन सब के पीछे जो अव्यक्त है उसे असंभूति कहा गया है, कारण ब्रह्म. इन दोनों को, दोनों की उपासना का जो अलग अलग फल है, व्यक्ति की व्यष्टि की उपासना, समष्टि की उपासना, सगुण की उपासना, निर्गुण की उपासना, साकार की उपासना, निराकार की उपासना, इनका अलग अलग फल बताया गया है. परंतु जो अलग अलग उपासना करते हैं और दोनों को समझने के लिए जो हम अन्य देवाहुर माने अन्य, जो अन्य पुराणों के द्वारा परंपराओं से जो समझाया गया है, बताया गया है, इतिहास पुराण की भी हमारी एक परंपरा है पुराणों के माध्यम, जैसे वेद के तात्पर्य को, वेद में शब्द आया सत्यम वद, सत्य बोलू किमर्थम कथम सत्यम, कैसे हम सत्य बोले, बोले उसके लिए हरिश्चंद्र की कथा, ये किसमें है, विस्तार के सहित पुराण में. वेद ने जो कहा उसको ही समझने के लिए उसका ही विस्तार पुराणों में बताया गया है. इसलिए ऐसा नहीं कि ये पुराण कुछ नहीं, इतिहास कुछ नहीं. इतिहास पुराण की जो हमारी एक भारत की विशुद्ध परंपरा है, उनको हम छोड़ दें, उनको हम त्याग दें कि ये सब कुछ नहीं है. केवल वेद, वेद तो है, परंतु वेद को समझने के लिए, वेद क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो हम कैसे समझेंगे? बोले वो पुराणों के द्वारा। इसीलिए कहा अन्य देवाहुर, अन्य के द्वारा, जो पुराणों के द्वारा है उसे हमें समझना होगा। क्या समझना होगा? संभूति की उपासना और असंभूति की उपासना। संभूति की उपासना कार्य व्यष्टिक रूप से जब उपासना होती है तो उसका फल अलग है। अलग है माने व्यष्टिक रूप से उपासना करने पर हमें उसका फल क्या है? उसका फल ये है कि हमें ऐश्वर्यादि की प्राप्ति हो जाएगी। अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा आदि आदि सिद्धियां हमें प्राप्त होंगी। व्यष्टि रूप से जब हम भावना करते हैं, व्यष्टिक रूप से हम सगुण की उपासना करते हैं, तो उपासना करने के लिए पहली बात तो ये है नारायण कि हम भगवान के प्रति भाव करके, ईश्वर का भाव करके सगुण साकार की उपासना करते हैं, तभी उसका हमें फल प्राप्त होता है। केवल केवल कोई ये कहे कि हमें किसी मूर्ति की उपासना करने से उसका फल हमें प्राप्त होता है, बोले नहीं। उसके पीछे हमें फल की प्राप्ति जब हम ईश्वर का, परमात्मा का भाव रख करके हम कोई उपासना करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है, अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और जो असंभूति है, अव्यक्तोपासना है, उस अव्यक्त उपासना का फल क्या है? उसका फल ये है कि प्रकृति उस अव्यक्त स्वरूप में विलीन हो जाती है, अर्थात उसका ये फल बताया गया है। यदि ये हम कहें कि इन दोनों में अगले मंत्र में यही बात स्पष्ट की गई कि इन ग्रंथों के द्वारा उस दोनों को अलग अलग रूप से हमें भली भांति समझना चाहिए। अच्छा, ये हम ये भी कह सकते हैं कि संभूति और असंभूति को व्यष्टि की उपेक्षा करके, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम व्यष्टि की उपासना की उपेक्षा करके समष्टि की अपेक्षा रखें, और समष्टि से अपेक्षा करें तो व्यष्टिक भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। बहुत लोग बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। हम किन्हीं से अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसी हमें प्राप्ति होनी चाहिए, अपेक्षा करते हैं। जिनसे हम अपेक्षा करते हैं उनके लिए हमारा कुछ कर्तव्य भी बन जाता है, और कर्तव्य निर्वहन की उपेक्षा करते हैं, केवल अपेक्षा रखते हैं, सो भी बात अच्छी नहीं है। और केवल हम सबकी उपेक्षा करते हैं तो भी बात अच्छी नहीं है। तो कहा कि इस व्यष्टि और समष्टि के बीच जोड़ने के लिए, एक दोनों को आपस में जोड़ करके, जो समन्वय रूप करके चलते हैं, जोड़ने के लिए सबसे बड़ा हमारे वैदिक सनातन धर्म में, यदि आप अन्य देवाहु पुराण आदि के द्वारा समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अच्छा उपयुक्त जो शब्द होगा वो यज्ञ होगा। यज्ञ शब्द बीच में एक ऐसा है कि जिसके लिए यज्ञ शब्द का प्रसंग, यदि रामचरितमानस के आधार पर आप विचार करें तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ, बाल लीलाएं हुई, अध्ययन किया, और तदोपरांत विश्वामित्र ऋषि का आगमन हुआ, और तब तक यहां तक की लीलाओं में, यहां तक के कार्य में कहीं भी उनके मुखारविंद से कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। राम कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। राम जो करते हैं सो सब धर्म है। भगवान राम यदि बोले तो पहली बार बोले क्या बोले, पहला शब्द यही बोले कि विश्वामित्र से कहा तुम जाए यज्ञ करो मुनि, अब आप जाओ, क्योंकि वो यज्ञ रक्षार्थ ही यज्ञ में जो उनके विघ्न आ रहे थे उनको दूर करने के लिए ही, यज्ञ की अपने यज्ञ को सफल करने के लिए ही रामचंद्र जी को लेकर के आए थे। इसलिए उन्होंने कहा प्रात काल कह मुनि सुन यज्ञ जाय कराई, आप जाओ मुनिवर निश्चिंत होकर के यज्ञ करो। यज्ञ करने के लिए उनको राम जी ने अपने मुंह से ये शब्द, पहला शब्द निकला, मानसकार कहते हैं इस विषय में कि पहला ही शब्द निकला राम जी के मुंह से क्या कि जाय यज्ञ कराई, आप जाइए यज्ञ कराई। तो यज्ञ एक ऐसा शब्द है माने जोड़ने की जो कड़ी है, क्योंकि सबको जिससे सबकी जिसमें प्रसन्नता है, जिसमें सबका हित है, जिसमें सबका व्यष्टि का भी हित है और समष्टि का भी हित है, जो समष्टि और व्यष्टि के हित को लेकर के यदि कुछ है तो वो केवल यज्ञ कर्म है, यज्ञ है, तो इसको ही यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि हम द्रव्य यज्ञ जो करते हैं, अग्नि में जो आहुति देते हैं वही यज्ञ हो, ऐसा यज्ञ नहीं। यज्ञ एक शब्द ऐसा शब्द है जो व्यष्टि और समष्टि को जोड़ता है, और जिसमें व्यष्टिक हित भी है समष्टिक हित भी है, और दोनों के लिए जो कल्याणकारक शब्द है वो केवल एक यज्ञ है ना। अर्थात व्यष्टि और समष्टि के इस कड़ी को जोड़ने के, जोड़ने का जो नाम है कार्य है उसी कार्य का नाम यज्ञ है। जोड़ने का जो कार्य है उसी का नाम हमें यज्ञ समझना चाहिए। ऐसे पुराणों में इस बात को हम समझें कि व्यष्टि और समष्टि के लिए जो अपने कर्तव्य का न तो व्यष्टि की उपेक्षा हो न समष्टि के भाव रहित की भावना कम हो, और उस भावना की पूर्ति भी उस कार्य की पूर्ति भी केवल यदि हो सकती है तो यज्ञ से हो सकती है। अगले मंत्र पर 14वें मंत्र में इसी बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया, संभूति च विनाशाय विनाश तदो दोयम भयम सह विनाशेन मृत्यु तिरुवा संभूत्या मृतम मनुपश्यति। अर्थात असंभूति जो कार्य, जो असंभूति और कार्य ब्रह्म के इन दोनों को साथ साथ में अच्छी तरह से जानते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं, और असंभूति के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं माने अपनी समस्त प्रकृति को उस अव्यक्त के अंदर विलीन कर लेते हैं, वही अमृतत्व की प्राप्ति कहा गया है। तो अर्थात मृत्यु को पार कर लेते हैं। विनाश जो शब्द आया है, विनाश का मतलब होता है जिसका जन्म होता है ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत, स्तंभ पर्यंत, सब के सब जो कुछ भी दिखाई पड़ रहे हैं ये सब इनका धर्म है, मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है। इसलिए जिस जो परिवर्तनशील है उसको मरण धर्म माना गया है, और जिस जो मरण धर्म से युक्त है वो सब विनाश है, विनाशवान है। इसलिए ये सब जो कार्य रूप जगत दिखाई दे रहा है इसी को विनाश रूप का, विनाशवान कहा गया है। ये हमेशा कभी एक जैसा रहने वाला नहीं है, ये सब का सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है। तो जो लोग केवल व्यष्टि की उपासना से अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना में, लाइक उपासना के लिए भी व्यक्त उपासना अव्यक्त उपासना कहा गया, यदि हम व्यक्त की उपासना को लेकर विचार करते हैं, अव्यक्त की उपासना को लेकर विचार करते हैं, तो अव्यक्त की उपासना माने जिसका परमात्मा का कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, निराकार जिसे हम कहेंगे, निराकार का कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता। कोई आदमी कहे कि मैंने निराकार का साक्षात्कार कर लिया है, तो निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना। तो निराकार का साक्षात्कार नहीं हो सकता, और साक्षात्कार हुए बिना कुछ बात हो नहीं सकती है। निराकार का तो साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम भी नहीं है और रूप भी नहीं है। और इधर सर्वगुण साकार, जो साकार में हम लेते हैं, तो साकार रूप की जो उपासना है, जिसमें हम भगवान की किसी मूर्ति विशेष की उपासना करते हैं, तो कोई मूर्ति पूजा कर रहा हो, मैं एक बार नहीं, एक लाख बार, एक करोड़ बार आप मूर्ति को पूजें, मूर्ति पूजने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, किसी का कल्याण नहीं। मूर्ति को मूर्ति समझ करके पूजते रहो, उससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति स्वयं जड़ है, तो उस जड़ से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। नारायण, एक बार इस पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक जिज्ञासु साधक किसी संत के पास गया और जाकर बोला, महाराज जी मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने उसे उठा करके मां की, दुर्गा जी की एक मूर्ति दे दी, तस्वीर दे दी, और कहा कि ले इसको, ले जा इसकी पूजा कर। उसने बड़े प्रेम से उस मूर्ति को रखा, उसके आगे रोज दिया भी जलाता है, धूप बत्ती भी करता है, तिलक भी लगा पूजता है उसको, मूर्ति को बड़े प्रेम पूजा करने लगा। पूजा करता रहा, मूर्ति की पूजा करता रहा, साल भर हो गया, उसे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। उसने अपने घर के आले में जाकर के उस मूर्ति को रखा हुआ था। इतने में साल भर जब हो गया, कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ दर्शन नहीं हुआ, तो फिर महात्मा जी के पास गया और फिर पूछने लगा, महाराज जी मुझे उससे कुछ लाभ तो नहीं हुआ, मेरा कुछ भला तो नहीं हुआ? तो महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो ले जा, ले गणेश जी की मूर्ति ले जा। उसके हाथ में गणेश जी की मूर्ति और दे दी। जब गणेश जी की मूर्ति दे, ये तो गणेश जी की मूर्ति को भी ले जा करके उसने आले में रखा, एक तरफ नीचे दुर्गा जी की मूर्ति है, ऊपर गणेश जी की अलग से रख दी। अब गणेश जी को जब रोज के क्रम के अनुसार, आज उसने दुर्गा जी की मूर्ति की तरफ देखना बंद कर दिया और गणेश जी की मूर्ति को देख रहा, उन पर तिलक लगा रहा, दिया जला रहा, जैसे धूप बत्ती कर रहा था, तो करते करते उसके दिमाग में एक बात आई कि धूप बत्ती मैं गणेश जी के लिए कर रहा हूं, इसकी सुगंध गणेश जी को जानी चाहिए, कहीं ये दुर्गा जी के अंदर भी, इनके नाक में भी इसकी खुशबू न चली जाए। उसने क्या किया, रुई ली और दुर्गा जी के नाक के आगे वो रुई लगाने लगा। जैसे रुई लगाने लगा, तो इतने में तड़तड़ा के साक्षात दुर्गा उसके सामने प्रकट हो गई। तो जैसे दुर्गा जी के उसे दर्शन मिले, तो कहने लगा, मुझे क्या पता था कि थोड़ी सी रुई नाक में लगा देने से आप खुश हो जाती हैं। मैं तो आज तक आपको धूप दिखाता रहा, बत्ती जलाता रहा, माला पहनाता रहा, सब कुछ करता रहा, ये सब भोग लगाता रहा कि आप प्रसन्न हो जाएं। आपकी प्रसन्नता नाक में रुई लगाने से होती, ये बात यदि मुझे पहले मालूम होता तो मैं ये काम पहले ही कर देता। तो माता जी ने कहा कि भाई बात यह है, तेरी रुई लगाने से नहीं प्रसन्न हुआ, आज तूने मेरे में ये समझा, आज तक तो तू मुझे धूप भी दिखाता रहा, बत्ती भी दिखाता रहा, तिलक भी लगाता रहा, माला भी पहनाता रहा, आज तक तू जो कुछ भी मेरे साथ करता रहा तो तू यही समझ के करता रहा कि ये मूर्ति है, परंतु आज तूने अपने अंदर, अपने हृदय में मेरे लिए ये भाव किया, चिन्मय भाव, चेतन का भाव, कि कहीं नाक में सुगंधी न चली जाए। सुगंध गंध ग्रहण करना ये चेतन का धर्म है, जड़ का धर्म नहीं है। तूने मेरे में चेतनता समझी, जब चेतन समझ के तुम ये मैं रुई लगाने लगा तो मैं तेरे सामने प्रकट हो गई। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि मूर्ति पूजने से महत्व नहीं है, मूर्ति पूजने से महत्व नहीं है, मूर्ति में आप जो चिन्मय भाव, चेतन का भाव, जब आप चेतन का भाव करके उसको पूजते हैं इस कार्य से, तो उससे प्रसन्नता होती है। बोले किसकी प्रसन्नता होती है? देवता की प्रसन्नता होती है, पितरों की प्रसन्नता होती है, सबकी, आचार्य की प्रसन्नता होती है, इन सबको प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को, पितरों को, ऋषियों को, आचार्यों को, सबको प्रसन्नता किसमें, सबकी इनकी प्रसन्नता किसमें है? बोले जब आप व्यष्टि रूप से देवता के की उपासना करते हैं। तो उपासना करने का महत्व क्या है? करने का महत्व ये नहीं है कि हम कौन से देवता की उपासना करें, परंतु सब में वो चेतन तो एक है, चेतन भाव करके। केवल शालिग्राम में या शिव जी के बाण में ही, शिवलिंग में ही भावना करके नहीं, वो चेतन का भाव जब आपके अंदर होगा तो उससे आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, सबकी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। एक बात ये है। तो ये सगुण व्यष्टिक उपासना है। और समष्टि के लिए कहा गया कि भैया निराकार, निराकार भी तो उपासना है। अब कोई कहे कि मुझे निराकार का साक्षात्कार हो, तो निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जिसका कोई आकार ही नहीं है, नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है, परंतु नाम रूप न होते हुए भी निराकार के लिए हमें कुछ न कुछ, कोई न कोई अवलंब, सहारा, किस सहारे से हम उस निराकार को समझ पाएंगे? उस निराकार के लिए भी तो हमें कोई न कोई क्या लेना होगा? बोले सहारा लेना होगा। तो उसका कोई न नाम होते हुए भी नाम का सहारा लेते हैं। निराकार में शब्द है, शब्द है ना, कोई न कोई, ओम इति अक्षर, केवल ओम, यही एक सहारा है, यही ब्रह्म है, उसी को समझ। तो किसी न किसी शब्द के सहारे से निराकार को समझने के लिए भी हमें किसी न किसी शब्द से, नाम से रहित होते हुए भी नाम को मान करके, नाम का आधार बना करके हम अपनी उपासना को, यहां मूर्ति को साकार में, मूर्ति को हम आधार बना के चलते हैं, और निराकार में शब्द को आधार बना करके चलते हैं। निराकार में कोई शब्द को ही आधार लेकर के उसका हम चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, और उसी, और परंतु दोनों में, उस शब्द में भी जैसे मूर्ति में चिन्मय भाव है, उसी तरह से शब्द में भी चेतन भाव से जब तक उसको हम समझेंगे नहीं, तब तक वो बात बनेगी नहीं नारायण। इसलिए शब्द में भी चेतनता है, शब्द में भी, जैसे मूर्ति में चेतन भाव लेकर के हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो उससे हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, अनेक अणिमादि आदि सिद्धि की प्राप्ति होती है, उससे सफलता की हम इस प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तो उसी भांति हम जब शब्द को आधार बना करके शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए निराकार क्या है, बोले शब्द ब्रह्म है, तो उसको आधार बना करके जब हम उसको चिन्मय चेतन समझ करके, शब्द को केवल जड़ समझ करके, राम शब्द को राम केवल जड़ मात्र मानकर, एक शब्द मात्र मान करके आप राम 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 करते रहो,